नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं फरहत नाज। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज आजादपुर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस टर्मिनल का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों का आह्वान, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कल से आम लोगों के लिए खुलेगा। दिल्ली नगर निगम के बुक्ड प्रॉपर्टीज पर अब बिजली का मीटर दिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने इस फैसले का स्वागत किया। और प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अल्फला समूह से जुड़े 25 से ज्यादा परिसरों की तलाशी ली। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज आजादपुर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नया टर्मिनल राजधानी के सार्वजनिक परिवहन को तेज, सुरक्षित और यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 40 नई ई बसों को हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार लगातार डीटीसी बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल कर रही है, जिससे दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके। आजादपुर से अब 21 प्रमुख रूटों पर 116 बसें नियमित रूप से संचालित होंगी, जिनमें अधिकांश इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इस टर्मिनल को आजादपुर मेट्रो स्टेशन से फुटओवर ब्रिज के माध्यम से जोड़ा गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर इंटरमोडल कनेक्टिविटी मिलेगी और यात्रा समय भी कम होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस पास सेक्शन, बेबी फीडिंग रूम, आधुनिक प्रतीक्षालय और सुरक्षित कवर वॉकवे जैसी सुविधाएं आम यात्रियों के सफर को अधिक आरामदायक बनाएंगी। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंदिरा नगर के आजादपुर मंडी में जिला समाज कल्याण कार्यालय के नए भवन की भी शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नया कार्यालय क्षेत्र की जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी और आसान तरीके से उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस दौरान दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रराज सिंह सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुल 15 विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित कार्यों का समन्वय भी इसी भवन से किया जाएगा।
हमारे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट 1 में 9 विधानसभाओं के काम होते हैं और सेकंड में 6 विधानसभाओं के, तो ऐसे 15 विधानसभाओं का काम यहां से कोऑर्डिनेटेड होगा। नई बिल्डिंग जिसमें बेहतर सुविधाएं अब जनता को मिलेगी, सारे अफसर यहां जनता के बीच में बैठेंगे और जितनी भी प्रकार की हमारी यहां पे योजनाएं हैं सोशल वेलफेयर हमारे डिपार्टमेंट की, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन है, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्पेशल पर्सन विद स्पेशल नीड है।
दिल्ली नगर निगम द्वारा बुक्ड प्रॉपर्टीज पर अब बिजली का मीटर दिया जाएगा। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने नगर निगम के बुक्ड प्रॉपर्टीज से जुड़े वर्षों पुराने लीगेसी इश्यू को भी सहज तरीके से खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से दिल्ली में 1,25,000 से अधिक बुक्ड प्रॉपर्टीज को सीधे तौर पर राहत मिलेगी। श्री सूद ने बताया कि इस आदेश के अनुसार अब किसी भी बुक्ड प्रॉपर्टी को सिर्फ बुक्ड होने के आधार पर बिजली कनेक्शन देने से मना नहीं किया जाएगा।
आज दिल्ली की सरकार ने दिल्ली की 1,25,000 से ज्यादा बुक्ड प्रॉपर्टीज, अब ये प्रॉपर्टीज हैं, उसमें फ्लोर्स के हिसाब से आप लाखों मीटरों की कल्पना करिए। एक प्रॉपर्टी बुक हो जाती है, उसमें 4 मंजिल बने हैं, चारों मंजिल बिना मीटर के रहती है, एक ही फ्लोर के मीटर से चारों मंजिल चलती है। लाखों लोग परेशान थे। नगर निगम की बुक्ड प्रॉपर्टी पे पानी का मीटर मिल जाएगा, बिजली का मीटर नहीं मिलेगा। क्या कारण है? आम आदमी पार्टी 10 साल से यहाँ थी, आम आदमी पार्टी खुद, उसके नेता खुद इस प्रकार की बुक्ड प्रॉपर्टीज में भ्रष्टाचार में लिप्त थे, इसलिए कभी निस्तारण करने की कोशिश नहीं की।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी दिल्ली सरकार द्वारा बुक्ड प्रॉपर्टीज पर बिजली कनेक्शन देने के निर्णय का स्वागत किया है। श्री सचदेवा ने कहा कि सरकार का ये एक अभूतपूर्व फैसला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल की उपलब्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन आज के समय में जल चक्र को प्रभावित कर रहा है। नई दिल्ली में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 और प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्रदान करते हुए राष्ट्रपति ने ये बात कही।
जल का सक्षम उपयोग एक वैश्विक अनिवार्यता है। हमारे देश के लिए जल का सक्षम उपयोग और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या की दृष्टि से हमारे जल संसाधन बहुत सीमित है। ऐसे स्थिति में सरकार और जनता को मिलकर वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर सिक्योरिटी के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए।
राष्ट्रपति ने पुरस्कार विजेताओं को जल संरक्षण के उनके प्रयासों के लिए बधाई दी और कहा कि इसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। उन्होंने देश के लिए जल के कुशल उपयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया।
हमारे देश में जल का 80% उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है, इसीलिए कृषि क्षेत्र में जल के सक्षम उपयोग पर सबसे अधिक जोर देने की आवश्यकता है। निरंतर इनोवेशन करते रहने की आवश्यकता है।
सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ संस्थान, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सहित 10 श्रेणियों में 46 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। नई दिल्ली के भारतीय मंडपम में चल रहा 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कल से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। इस वर्ष मेले की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। मेले में बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य हैं, वहीं मेले का विशेष राज्य झारखंड है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन में प्रशासनिक कार्यों के महाप्रबंधक शंकरानंद भारती ने बताया कि दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेले में विशेष इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आगंतुकों की सुविधा के लिए मेले में शटल बस सेवा उपलब्ध है, साथ ही किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल बूथ और एम्बुलेंस भी तैनात की गई है।
दर्शकों की सुविधाओं का इस बार विशेष रूप से हमने ध्यान रखा है। जो दर्शक हमारे आएंगे, यदि जो मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं तो नजदीकी मेट्रो स्टेशन से हमने शटल सुविधा भी दी है ताकि दर्शकों को यहाँ तक पहुँचने में कोई परेशानी न हो। इसके अतिरिक्त वाले विजिटर की किसी प्रकार की मेडिकल एक्सीजेंसी को भी हमने ध्यान में रखा है। इस बार पर्याप्त संख्या में हमने एम्बुलेंसेज, व्हील चेयर इनकी व्यवस्था की है ताकि किसी भी प्रकार की जो मेडिकल एक्सीजेंसी है उसको तुरंत हम एड्रेस कर सकें।
मेले में टिकट का मूल्य वयस्कों के लिए 80 रूपए और बच्चों के लिए 40 रूपए है। वहीं छुट्टी वाले दिन वयस्कों के लिए 150 रूपए और बच्चों के लिए 60 रूपए है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए मेले में प्रवेश निःशुल्क है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में वस्त्र पवेलियन का उद्घाटन किया। ये पवेलियन वस्त्र कला भारत की विरासत विषय पर आधारित है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा एक विशेष पवेलियन भी स्थापित किया गया। इस पवेलियन में AAI के अधिकारियों द्वारा आगंतुकों को विमानन क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के महाप्रबंधक संदीप झा ने बताया कि उनके पवेलियन में विमानन क्षेत्र की यात्रा और प्रक्रिया को प्रदर्शित किया जा रहा है।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस बार अपने स्टॉल के ऊपर हमारी सारी जर्नी के अंदर जितने भी लोग हमारे हेल्प करते हैं हवाई जहाज में उसके बारे में बताया जा रहा है। हम उनको बताना चाहते हैं कि इनकी पायलट और एयर होस्टेस है, पीछे और भी लोग हैं जो काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे इंजीनियर्स रात दिन लगे रहते हैं। हमारे पास डिफरेंट क्विजेज है जिससे हम बच्चों को एंगेज कर रहे हैं, बच्चों के माइंड को बताना चाहते हैं कि एविएशन में दे कैन एक्सप्लोर न्यूमरस जॉब्स हियर। तो उनको इस बार हमने अपना जो स्किल इंडिया का थीम रखा है इसमें रखा है कि हम लोग कैसे इग्नाइट करें यंग माइंड्स को टुवर्ड्स द एविएशन।
दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए लोगों को सलाह दी गई है कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नई दिल्ली स्थित एम्स के प्लोमनरी एवं स्लीप मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनंत मोहन ने कहा कि अगर घर से निकलना बहुत जरूरी हो तो लोगों को मास्क पहनकर ही निकलना चाहिए। डॉक्टर मोहन ने बच्चों को सलाह दी है कि प्रदूषण का स्तर ज्यादा होने पर वे बाहर खेलने या बाहरी गतिविधियों से बचें।
मास्क पहन के निकलो जितना भी हो सके, जब बहुत खराब एयर क्वालिटी हो, अगर जरूरत नहीं है तो ना जाएं, और अगर जाना है तो ऐसे टाइम पे जाएं जहाँ पे थोड़ा एयर क्वालिटी बेटर हो। सुबह शाम मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग वगैरह अभी ना करें, बच्चों को भी ना करें, एल्डरली लोग भी ना करें, इंडोर ही करें जो भी आपको अपनी एक्टिविटीज करनी है। आसपास साफ सफाई, कोई चीज जलाए ना वगैरह वगैरह।
इस समय दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज शाम राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 374 दर्ज किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आज से नई दिल्ली में प्रोजेक्ट मौसम के अंतर्गत हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर समुद्री नेटवर्क के चौराहे पर स्थित द्वीप विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। एक रिपोर्ट।
कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रोजेक्ट मौसम विरासत विज्ञान और समुदाय का संगम है। उन्होंने कहा कि विरासत को केवल संग्रहालय की वस्तु के रूप में नहीं बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक वातावरण के रूप में माना जाना चाहिए। श्री शेखावत ने कहा कि भारत पारदर्शिता, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के सम्मान और हिंद महासागर के देशों के बीच सहयोग में विश्वास करता है। उन्होंने कहा कि परियोजना मौसम का उद्देश्य समुद्री सांस्कृतिक नेटवर्क का पुनर्निर्माण करना, लुप्तप्राय तटीय परंपराओं की रक्षा करना, सहयोगात्मक संरक्षण रोडमैप तैयार करना और ये सुनिश्चित करना है कि समुद्री विरासत को न केवल याद रखा जाए बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए सक्रिय रूप से संरक्षित भी किया जाए। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अल्फला समूह से जुड़े 25 से ज्यादा परिसरों की तलाशी ली। ये तलाशी अभियान वित्तीय अनियमितताओं, शैल कंपनियों के इस्तेमाल, आवास संस्थाओं और धन शोधन की चल रही जांच का एक हिस्सा है। निदेशालय ने कहा है कि वे समूह से जुड़ी 9 शैल कंपनियों की जांच कर रही है जो सभी एक ही पते पर पंजीकृत है। अल्फला ट्रस्ट और संबंधित संस्थाओं की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इस महीने की 10 तारीख को दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के सिलसिले में कई डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद अल्फला विश्वविद्यालय जांच के दायरे में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया। लेख में बताया गया है कि भारत के पास वैश्विक जलवायु को अधिक पारदर्शिता और साझा मानकों के साथ नया रूप देने के पर्याप्त अवसर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस लेख में दर्शाया गया है कि भारत के जलवायु को वर्गीकृत करने के मसौदे और भारत में बढ़ते हुए हरित जलवायु के विकल्पों का उल्लेख किया गया है। ये व्यवहारिक नेतृत्व एक उत्कृष्ट उदाहरण है और ये भविष्य में विश्व का प्रभावी रूप से मार्गदर्शन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भारत के अमर वीर सपूत और क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की जन्मतिथि पर उन्हें नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह के साथ किए गए उनके ऐतिहासिक प्रतिरोध ने ब्रिटिश साम्राज्य को अन्याय के विरुद्ध भारतीय जनता की अडिग आवाज सुनने पर मजबूर किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए उनका तप और त्याग आज भी हर भारतीय को कर्तव्य, साहस और देश प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दिल्ली विश्वविद्यालय और छात्र कल्याण न्यास के सहयोग से आज शहर के राजधानी महाविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का विषय है धरती आबा बिरसा मुंडा, आधुनिक भारत में प्रतिरोध, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और 150 वर्षों के आदिवासी दावे के दार्शनिक आधार। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने संबोधन में भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को याद करते हुए उनके साहस, पहचान और संघर्ष को आधुनिक भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में पूंजी बाजार के हितधारकों के साथ चौथे बजट पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा। नई दिल्ली में फिक्की की 98वीं वार्षिक आम बैठक के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि सरकार वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवाचार को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने एक समृद्ध और विकसित देश के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास के महत्व पर बल दिया। श्री गोयल ने कहा कि कार्यबल को सही कौशल से लैस करना इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत वर्तमान में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले 2 वर्ष में देश को तीसरे स्थान पर पहुंचाने में ये महत्वपूर्ण होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज आजादपुर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस टर्मिनल का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों का आह्वान, 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कल से आम लोगों के लिए खुलेगा। दिल्ली नगर निगम की बुक्ड प्रॉपर्टीज पर अब बिजली का मीटर दिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने इस फैसले का स्वागत किया और प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अल्फला समूह से जुड़े 25 से ज्यादा परिसरों की तलाशी ली। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।